नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम डेविड गैरो की पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली किताब बेयरिंग द क्रॉस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड द सडन क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की गहराइयों में उतर रहे हैं।
जी,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये नाम सुनते ही नागरिक अधिकार आंदोलन, उनके जबरदस्त भाषण और हाँ, खासकर आई हैव अ ड्रीम, ये सब याद आता है।
बिल्कुल, वो एक आइकॉन है।
हाँ, लेकिन गैरो की ये किताब ना, ये हमें उस जानी पहचानी लगभग एक पौराणिक छवि के पीछे के इंसान से मिलवाती है। ये सिर्फ उनकी कामयाबियों की कहानी नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष, उनके निजी बोझ का एक बहुत ही मानवीय चित्रण है।
आपने बिल्कुल सही कहा। गैरो का काम दरअसल उस आम धारणा को चुनौती देता है कि किंग कोई जन्मजात हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहने वाले नेता थे।
अच्छा।
हाँ, किताब दिखाती है कि वो एक बहुत जटिल इंसान थे, गहरे शक, भयानक थकान और हाँ, निजी संघर्षों से भी वो लगातार जूझ रहे थे। तो गैरो का जो मुख्य सवाल है वो यही है कि भाई, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इतने अंदरूनी और बाहरी दबाव हों, वो अमेरिका में नस्लीय अलगाव की जो सदियों पुरानी औपचारिक व्यवस्था थी, उसे तोड़ने में कामयाब कैसे हुआ?
और ये सवाल आज भी कितना ज़रूरी लगता है ना? शायद इसलिए कि हमें लीडरशिप के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
सही बात है
कि ये कोई शानो शौकत की चीज़ नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है, एक क्रॉस है, जैसा कि किताब का नाम है। और किंग ने इसे गैरो के मुताबिक अपने गहरे कर्तव्य बोध और एक ऐतिहासिक बुलावे के एहसास की वजह से उठाया।
हाँ, और गैरो का रिसर्च वो कमाल का है। उन्होंने FBI, मतलब अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो गुप्त निगरानी फाइल्स थी।
अच्छा, वो भी?
हाँ, वो फाइल्स, किंग के वो पत्र जो कभी छपे नहीं, और उनके दर्जनों करीबी साथियों के इंटरव्यूज, इन सब का बहुत गहरा विश्लेषण किया है। और इससे हमें किंग और उनके संगठन SCLC यानी सदन क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की एक अनफिल्टर्ड, कभी कभी थोड़ी असहज करने वाली, लेकिन बेहद मानवीय तस्वीर मिलती है।
तो चलिए फिर इस सफर को शुरू से देखते हैं। किंग का नेतृत्व में आना, जैसा किताब बताती है, वो काफी अचानक हुआ था।
हाँ, बेहद अप्रत्याशित। देखिए, 1955 में जब मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट शुरू हुआ, तब वो सिर्फ 26 साल के थे।
सिर्फ 26 के?
जी, अटलांटा से आए एक नए नवेले पादरी थे मॉन्टगोमरी के डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च में। गैरो बताते हैं कि उन्हें मॉन्टगोमरी इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष इसलिए चुना गया क्योंकि वो शहर में नए थे।
अच्छा।
मतलब वो किसी स्थानीय गुटबाजी या पुरानी राजनीतिक खिंचतान में फंसे नहीं थे। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में वो बहुत हिचकिचा रहे थे।
सच में?
उन्हें ये भूमिका नहीं चाहिए थी।
उन्हें लगा कि ये बस कुछ वक्त के लिए है।
असल में उनकी इच्छा तो एक शांत अकेडमिक या पादरी वाली जिंदगी जीने की थी।
तो मतलब एक अनिच्छुक नायक।
हाँ।
गैरो की किताब इस अनिच्छा पे काफी जोर देती है ना?
हाँ। गैरो इसे किंग के चरित्र का एक अहम हिस्सा मानते हैं, लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे किंग ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अपने धार्मिक प्रशिक्षण और महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों को मिलाकर उन्होंने एक ताकतवर दर्शन बनाया।
वैसे मॉन्टगोमरी बॉयकॉट किसी एक नेता की योजना नहीं थी, ये तो रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के बाद जमीन से उठा आंदोलन था।
हाँ, स्वतः स्फूर्त।
बिल्कुल, किंग जैसे नेताओं ने उसे दिशा दी, आवाज दी, और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मॉन्टगोमरी की बसों में अलगाव खत्म हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी।
और इसी के बाद SCLC बनी।
जी हाँ, इसी कामयाबी के आधार पर उन्होंने दूसरे दक्षिणी अश्वेत पादरियों के साथ मिलकर SCLC की स्थापना की। मकसद था कि मॉन्टगोमरी का जो अहिंसक प्रतिरोध का मॉडल था, उसे पूरे दक्षिण में फैलाया जाए। लेकिन गैरो ये साफ करते हैं कि मॉन्टगोमरी के बाद रास्ता आसान नहीं था। SCLC को शुरुआत में अपनी दिशा खोजने में काफी मुश्किल हुई। ये जानना दिलचस्प है कि पहली कामयाबी के बाद भी राह इतनी कठिन थी।
बिल्कुल, गैरो बताते हैं कि मॉन्टगोमरी के बाद कई साल SCLC के लिए रणनीतिक उलझन और थोड़ी दिशाहीनता के थे।
अच्छा।
1961-62 में एल्बेनी जॉर्जिया का जो अभियान था, वो इसकी मिसाल है। गैरो उसे एक बड़ी रणनीतिक विफलता मानते हैं।
विफलता क्यों?
हुआ ये कि वहां के जो पुलिस प्रमुख थे, लॉरी प्रिशेट, वो बड़े चलाक निकले। उन्होंने किंग और SCLC की रणनीति समझ ली थी।
क्या रणनीति थी?
रणनीति अक्सर ये होती थी कि पुलिस की क्रूरता से राष्ट्रीय ध्यान खींचा जाए, लेकिन प्रिचेट ने क्या किया, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने से परहेज किया।
अरे
हाँ, उन्हें शांति से गिरफ्तार किया और आसपास की काउंटी जेलों में भेज दिया, ताकि एल्बेनी की जेलें भरे नहीं और संकट का माहौल ना बने।
ओहो, तो मतलब FSC की रणनीति वहां काम ही नहीं आई, ये तो किंग के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा।
निश्चित रूप से गैरो इसे किंग के लिए एक बहुत ही नम्र मतलब हम्बलिंग एक्सपीरियंस बताते हैं। वो एल्बेनी से बिना किसी खास जीत के लौटे, लेकिन गैरो ये भी बताते हैं कि किंग और SLC ने इस असफलता से सीखा, यहीं से उनकी रणनीति और मजबूत हुई।
और इसी सीख का नतीजा हमें बर्मिंघम में देखने को मिला, जहां हालात एकदम नाटकीय रूप से बदल गए।
हाँ बिल्कुल, एल्बेनी के सबक के साथ SLC ने 1963 में बर्मिंघम अलाबामा में बहुत सोच समझकर अभियान शुरू किया।
क्या अलग था इस बार?
उन्होंने जानबूझकर शहर के जो कुख्यात निस्लवादी और हिंसक पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर थे, यूजीन बुल कॉनर,
हाँ, बुल कॉनर।
उनको निशाना बनाया। उन्हें अंदाजा था, या कहिए उम्मीद थी, कि कॉनर हिंसक प्रतिक्रिया देंगे।
और वही हुआ।
बिल्कुल, कॉनर ने स्कूली बच्चों समेत शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कुत्तों से हमले करवाए, उन पर पानी की तेज धारें छोड़ी। वो भयानक तस्वीरें उन्होंने अमेरिका और दुनिया को हिलाकर रख दिया। गैरो दिखाते हैं कि ये क्रूरता कोई हादसा नहीं थी, बल्कि SCLC की रणनीति का सोचा समझा नतीजा थी, जिसे उन्होंने क्रिएटिव टेंशन कहा था।
क्रिएटिव टेंशन, रचनात्मक तनाव, ये किंग के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे गैरो ने अपनी किताब में उभारा है।
हाँ, ये सिर्फ कोई नैतिक सिद्धांत नहीं था, ये एक सक्रिय सोची समझी रणनीति थी। किंग मानते थे कि अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई का मकसद समाज में एक ऐसा रचनात्मक तनाव पैदा करना है जो अन्याय को अनदेखा करना नामुमकिन बना दे।
अच्छा, मतलब यथास्थिति को चुनौती देना।
बिल्कुल, और छिपे हुए नस्लवाद को सतह पर लाना। बर्मिंघम में ये रणनीति कामयाब रही, और इसी दौरान किंग गिरफ्तार हुए और उन्होंने जेल से वो अपना मशहूर पत्र लिखा, लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल।
हाँ, जो नागरिक अवज्ञा के पक्ष में एक जबरदस्त तर्क था।
सही कहा,
बर्मिंघम की घटनाओं ने तो राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भूचाल ला दिया, यहीं से आंदोलन को एक नई रफ्तार मिली है ना?
हाँ बिल्कुल, बर्मिंघम ने इतना नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाया कि तत्कालीन राष्ट्रपति JFK के प्रशासन को नागरिक अधिकारों पर कानून बनाने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ा। इसने सीधे तौर पर 1963 के मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम को प्रेरित किया। 10 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे।
और वहीं किंग ने अपना ऐतिहासिक आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया।
जी हाँ, वो आंदोलन की नैतिक शक्ति और लोकप्रियता का शिखर था। इसके तुरंत बाद 1964 का ऐतिहासिक सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ, जिसने सार्वजनिक जगहों पर अलगाव को गैरकानूनी बना दिया।
और किंग को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला।
जी, उसी साल। फिर 1965 में सेल्मा, अलाबामा में वोटिंग अधिकारों के लिए अभियान चला।
सेल्मा और एडमंड पेटिस ब्रिज पर हुआ वो भयानक हमला, जिसे ब्लडी संडे कहते हैं, गैरो इस घटना को कैसे देखते हैं?
गैरो इसे आंदोलन के क्लासिक चरण की एक और अहम कड़ी मानते हैं। सेल्मा में भी रणनीति कुछ कुछ बर्मिंघम जैसी ही थी। वहां के जो कुख्यात नस्लवादी शेरिफ थे, जिम क्लार्क,
हाँ,
उनकी हिंसक प्रवृत्ति को उजागर करना। 7 मार्च 1965 को जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी एडमंड पेटस ब्रिज पार कर रहे थे, तो उन पर राज्य पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई, आंसू गैस छोड़ी।
और ये सब टीवी पे दिखाया गया?
हाँ, इसका राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारण हुआ और इसने पूरे देश में गुस्सा भर दिया। इसी ने आखिरकार राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को 1965 का वोटिंग राइट्स एक्ट कांग्रेस से पास करवाने के लिए प्रेरित किया,
जिसने अश्वेत अमेरिकियों के लिए वोटिंग का अधिकार पक्का किया।
बिल्कुल, गैरो मानते हैं कि ये दक्षिणी अलगाव के कानूनी ढांचे को तोड़ने वाले क्लासिक चरण का अंत था।
लेकिन गैरो ये भी बताते हैं कि इसी कामयाबी के साथ साथ एक अंधेरा साया भी किंग पर मंडरा रहा था, FBI की निगरानी।
हाँ, ये गैरो की किताब का एक बहुत ही परेशान करने वाला हिस्सा है। जैसे जैसे किंग का कद और असर बढ़ा, FBI के डायरेक्टर जे एडगर हूवर का उनके प्रति जुनून और नफरत, वो भी बढ़ती गई।
हूवर उन्हें खतरा मानते थे।
हाँ, हूवर किंग को एक खतरनाक कट्टरपंथी मानते थे और उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने और निजी तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। FBI ने किंग की लगातार निगरानी की, उनके फोन टैप किए,
बाप रे,
उनके निजी जीवन और कमजोरियां, जैसे उनके विवाहेतर संबंध और अकेडमिक साहित्यिक चोरी के आरोप, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। और हद तो तब हो गई जब उन्हें गुमनाम पत्र भेजकर आत्महत्या के लिए उकसाने तक की कोशिश की गई।
ये तो बहुत भयानक है।
हाँ, गैरो दिखाते हैं कि इस लगातार के उत्पीड़न का किंग पर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। उनका क्रॉस, उनका बोझ और भारी हो गया।
ये जानकर कि वो इतने बाहरी और अंदरूनी दबावों से जूझ रहे थे, उनका जो सार्वजनिक धैर्य था वो और भी असाधारण लगता है। किताब का शीर्षक बेयरिंग द क्रॉस का मतलब शायद यहीं सबसे ज्यादा साफ होता है।
निश्चित रूप से, गैरो बहुत विस्तार से बताते हैं कि किंग के लिए लीडरशिप कोई सम्मान या ताकत का पद नहीं था, वो तो पीड़ा और बोझ का दूसरा नाम बन गया था। वो लगातार मौत की धमकियों के साए में जी रहे थे, कभी न खत्म होने वाली यात्राओं से थके रहते थे, SCLC के अंदर जो झगड़े और ईर्ष्या होती थी उससे परेशान थे, आंदोलन के लिए पैसा जुटाने का लगातार दबाव झेलते थे, और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक होने का जो भारी बोझ था वो अलग।
ऐसा लगता है जैसे वो पिस रहे थे।
हाँ, गैरो लिखते हैं कि वो अक्सर अपने करीबी दोस्तों से कहते थे कि काश वो एक शांत पादरी या प्रोफेसर की जिंदगी में लौट पाते, लेकिन एक गहरे कर्तव्य बोध और इतिहास में अपनी भूमिका के एहसास ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया।
और 1965 के बाद गैरो दिखाते हैं कि किंग का ध्यान और उनका एजेंडा भी बदलने लगा था। वो सिर्फ कानूनी अधिकारों से आगे सोचने लगे थे।
हाँ, ये किंग के विकास का एक बहुत अहम चरण है जिस पर गैरो खास ध्यान देते हैं। वोटिंग राइट एक्ट के बाद किंग को एहसास हुआ कि कानूनी बराबरी काफी नहीं है।
अच्छा,
उन्होंने अपना ध्यान उत्तर के शहरों में जो गहरी जड़े जमाए आर्थिक अन्याय था, गरीबी थी, प्रणालीगत नस्लवाद था, उसकी तरफ मोड़ा। उन्हें ये समझ आया कि कानूनी अधिकार तब तक बेमानी है जब तक लोगों के पास अच्छी जिंदगी जीने के आर्थिक साधन न हो। गैरो उनके उस मशहूर कथन को कोट करते हैं, लंच काउंटर पर बैठने का अधिकार होने का क्या फायदा अगर आप हैमबर्गर खरीदने का खर्च ही नहीं उठा सकते।
बिल्कुल सही बात।
इसी सोच ने उन्हें 1966 में शिकागो में गरीबी और खराब घरों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया, हालांकि वो अभियान अल्बेनी की तरह काफी हद तक असफल रहा था।
पक नजरिए ने उन्हें वियतनाम युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया, जो उस वक्त एक बहुत बहुत विवादास्पद कदम था।
बिल्कुल, 1967 में किंग ने न्यूयॉर्क के रिवरसाइड चर्च में वियतनाम युद्ध की सार्वजनिक रूप से कड़ी निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया।
उन्होंने युद्ध को किससे जोड़ा?
उन्होंने युद्ध को नस्लवाद और गरीबी से जोड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि ये युद्ध न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि ये अमेरिका के वो संसाधन भी निगल रहा है जिनका इस्तेमाल घर पर गरीबी और अन्याय से लड़ने के लिए होना चाहिए।
ये तो बहुत बड़ा स्टैंड था।
हाँ, गैरो बताते हैं कि ये एक बेहद साहसिक लेकिन महंगा फैसला था। इसने उन्हें राष्ट्रपति जॉनसन, जो कभी उनके सहयोगी थे, कई उदारवादी समर्थकों, मीडिया और यहाँ तक के नागरिक अधिकार आंदोलन के अंदर भी कई बड़े लोगों से अलग थलग कर दिया।
उन पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगे थे।
जी हाँ, गैरो इसे किंग के लिए एक और भारी क्रॉस के रूप में देखते हैं, लेकिन एक ऐसा क्रॉस जिसे उन्होंने अपने जमीर की आवाज पर उठाया था।
गैरो की किताब के आधार पर किंग के जीवन के 3 सबसे निर्णायक मोड़ देखें जिन्होंने उनके और आंदोलन के रास्ते को एकदम बदल दिया, तो वो कौन से होंगे?
पहला, इसमें कोई शक नहीं, मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट 1955-56 होगा। यहीं पर एक अनिच्छुक युवा पादरी को राष्ट्रीय मंच पर लाया गया। यहीं उन्होंने अपनी असाधारण बोलने की कला और नेतृत्व क्षमता दिखाई, अहिंसक प्रतिरोध की ताकत को आजमाया और अपने आने वाले मिशन की नींव रखी। ये उनके अप्रत्याशित उदय का पल था।
और दूसरा मोड़?
दूसरा अहम मोड़ गैरो के विश्लेषण के हिसाब से बर्मिंघम अभियान 1963 था।
अच्छा।
अल्बेनी की नाकामी से सीखकर यहां SCLC ने जानबूझकर टकराव पैदा करने की रणनीति अपनाई, जो कामयाब रही। इसने न सिर्फ राष्ट्रीय जमीर को झकझोरा और 1964 के सिविल राइट्स एक्ट का रास्ता बनाया, बल्कि इसने किंग को एक साबित हो चुके रणनीतिकार के तौर पर भी स्थापित किया। और यहीं लिखा गया लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल उनके नैतिक दर्शन का एक स्थायी दस्तावेज बन गया। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने असफलता को सीखने के मौके में बदला।
और तीसरा निर्णायक मोड़? शायद उनके बाद के सालों से।
हाँ, तीसरा मोड़ में वियतनाम युद्ध के खिलाफ सार्वजनिक स्टैंड 1967 को मानूंगा।
क्यों?
ये एक सचेत नैतिक फैसला था जिसने उनके मिशन को संकीर्ण नागरिक अधिकारों से आगे बढ़ाकर सार्वभौमिक मानवाधिकारों, शांति और आर्थिक न्याय तक फैला दिया। लेकिन जैसा हमने बात की, इसकी भारी राजनीतिक और व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी।
इसने उन्हें और अकेला कर दिया।
हाँ, पहले से कहीं ज्यादा। लेकिन ये उनके बढ़ते रेडिकलाइजेशन और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण को भी दिखाता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। गैरो इसे किंग के आखिरी सालों की त्रासदी और साहस दोनों के प्रतीक के तौर पर देखते हैं।
गैरो की किताब की सबसे स्थायी छाप शायद किंग का यही मानवीकरण है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे नायक भी इंसान होते हैं, अपनी तमाम कमजोरियों और संघर्षों के साथ। ये पहलू कितना जरूरी है।
ये बेहद जरूरी है, और शायद गैरो की सबसे बड़ी कामयाबी भी यही है। किताब किंग के निजी संघर्षों को बिना किसी झिझक के सामने रखती है।
जैसे
उनकी भयानक थकान, डिप्रेशन के दौरे, गहरा आत्मसंदेह, एसीएल यहंदर की लगातार खींचतान, और हाँ, व्यक्तिगत कमजोरियों जैसे विवाहेतर संबंध और साहित्यिक चोरी के आरोप उनसे पैदा हुआ अपराध बोध। गैरो यह दिखाते हैं कि एफबीआई ने इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की, जिससे उनका मानसिक बोझ और बढ़ गया।
लेकिन जैसा आपने कहा, ये जानकारी उन्हें छोटा नहीं बनाती, बल्कि उनके सार्वजनिक साहस, उनके अथक प्रयासों और उनकी अटूट प्रतिबद्धता को और भी ज्यादा असाधारण बना देती है।
बिल्कुल।
ये जानना कि वो किस हद तक निजी और सार्वजनिक मुश्किलों से लड़ रहे थे, हमें उनके नेतृत्व की असली कीमत का एहसास कराता है।
बिल्कुल सही। गैरो का मकसद किंग की मूर्ति को तोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी जटिल इंसानियत को समझना और उसकी सराहना करना है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व दैवीय पूर्णता में नहीं होता, बल्कि मानवीय अपूर्णता के बीच लचीलेपन में, नैतिक दृढ़ विश्वास में और व्यक्तिगत डर, नागामियों और कमजोरियों के बावजूद दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। ये असफलता से सीखने जैसे एल्बेनी से बर्मिंघम तक सामाजिक सक्रियता की भारी मनोवैज्ञानिक कीमत को समझने और सबसे मुश्किल वक्त में भी अपने विश्वासों पर टिके रहने के महत्व को दिखाता है। ये सिर्फ अमेरिका या नागरिक अधिकारियों की कहानी नहीं है, ये मानवीय संघर्ष, साहस और दृढ़ता की एक सार्वभौमिक कहानी है।
तो डेविड गैरो की इस गहरी और मानवीय पड़ताल से हम कौन से मुख्य सबक ले सकते हैं, अगर हमें तीन अंतिम निष्कर्ष निकालने हो तो?
मेरे विचार में गैरो की बेरिंग द क्रॉस से तीन मुख्य बातें उभर कर आती हैं।
पहली,
एक, भावनात्मक अंतर्दृष्टि। नेतृत्व का बोझ, जैसा किंग ने महसूस किया, वो सचमुच असहनीय हो सकता है। असली साहस परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों, गहरे शक और भारी अपराध बोध के बावजूद उस बोझ को लगातार उठाते रहने में है। गैरो दिखाते हैं कि किंग की महानता उनके संघर्षों से अलग नहीं थी, बल्कि उन्हीं के बीच से निकली थी। उनका दर्द और उनकी हिम्मत एक ही सिक्के के दो पहलू थे।
बहुत गहरी बात है। दूसरी,
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। अहिंसक प्रतिरोध सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक गतिशील, सोची समझी और लगातार विकसित होने वाली रणनीति है। गैरो के विश्लेषण से पता चलता है कि इसकी कामयाबी के लिए कितनी सावधानी से योजना बनानी पड़ती है, अपने विरोधी की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है और नाकामियों से लगातार सीखना पड़ता है, जैसे अल्बेनी से बर्मिंघम तक का रणनीतिक विकास। ये सिर्फ विरोध करना नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से विरोध करना है, ताकि अन्याय को अनदेखा करना नामुमकिन हो जाए।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि।
एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। समाज में स्थायी और सार्थक बदलाव लाने के लिए सिर्फ कानून बदल देना काफी नहीं है। जो गहरे बैठे हुए आर्थिक अन्याय हैं, जो प्रणालीगत नस्लवाद हैं, इन संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। किंग ने अपने आखिरी सालों में इसी सच्चाई को पहचाना और पुअर पीपल्स कैंपेन जैसे अभियानों के जरिए इस पर काम करना शुरू किया। सच्ची समानता के लिए एक समग्र कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नजरिए की जरूरत है, और ये संघर्ष आज भी उतना ही जरूरी और अधूरा है।
ये वाकई एक विचार करने वाली चर्चा रही, जो हमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक नए और शायद ज्यादा मानवीय नजरिए से देखने में मदद करती है।